नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में स्वास्थ्य और जन सुविधाओं से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। राशन कार्ड पात्रता के नए नियम लागू, आय सीमा 1,20,000 रूपए हुई। दिल्ली नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में संपत्ति कर संग्रह का नया रिकॉर्ड बनाया। वायु गुणवत्ता में गिरावट को देखते हुए ग्रेप 3 लागू किया गया। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य और जन सुविधाओं से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। श्रीमती गुप्ता ने इस क्षेत्र में 3 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 1 अटल कैंटीन और मीनाक्षी मंदिर रोड के निर्माण कार्यों की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से स्थानीय लोगों को घर के पास ही मुफ्त डॉक्टर परामर्श, दवाएं, टीकाकरण और प्राथमिक उपचार की सुविधा मिलेगी। बादली मोड़ स्थित अटल कैंटीन से जरूरतमंदों को 5 रूपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सम्मान और बुनियादी ढांचा दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है और इन परियोजनाओं से क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति मिलेगी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि फॉरेंसिक जांच से स्पष्ट हो गया है कि नेता प्रतिपक्ष आतिशी की कथित टिप्पणियों को लेकर सदन की कार्यवाही की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। संवाददाता सम्मेलन में आज श्री गुप्ता ने कहा कि समानांतर जांच और राज्य एजेंसियों के संभावित दुरुपयोग से जुड़े गंभीर प्रश्नों के मद्देनजर इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जा सकती है। श्री गुप्ता ने बताया कि विपक्ष की मांग पर सदन ने सर्वसम्मति से निर्णय लेने के बाद ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा था।
वीडियो की चेन ऑफ कस्टडी का इस पूरे आदेश में कहीं कोई जिक्र नहीं है। वीडियो कब जब्त हुआ और जब आपने एक वीडियो प्राप्त किया कहीं से भी, तो उसकी ओरिजिनलिटी के लिए दिल्ली विधानसभा से कोई बातचीत क्यों नहीं की, कोई कम्युनिकेशन क्यों नहीं किया? जब एक फॉरेंसिक जांच ऑलरेडी लैब को भेज दी गई, साइंस लैब को, तो फिर ये पैरेलल एक्सरसाइज क्यों हुई?
इस बीच दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि विधानसभा की फॉरेंसिक जांच वैधानिक है और इसी आधार पर आगे संवैधानिक और संसदीय कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली में 1,20,000 रूपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार भी अब राशन कार्ड के पात्र होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इससे पहले ये सीमा 1,00,000 रूपये थी।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार के कोई भूखा ना रहे लक्ष्य के अंतर्गत नए खाद्य सुरक्षा नियम लागू किए जा रहे हैं। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार स्पष्ट नियमों के अभाव में 3,89,000 से अधिक आवेदन लंबित थे। आंकड़ों के सत्यापन के बाद अब 8,27,000 से अधिक रिक्त स्थान है, जिनमें जरूरतमंद लोगों को शामिल किया जाएगा। नए नियमों के अंतर्गत राजस्व विभाग का आय प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। इस योजना के अंतर्गत वे परिवार इसके पात्र नहीं माने जाएंगे जिनके पास ए से ई श्रेणी की कॉलोनियों में संपत्ति, 4-पहिया वाहन, आयकर भुगतान, सरकारी नौकरी या 2 किलोवाट से अधिक बिजली कनेक्शन है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस निर्णय से व्यवस्था पारदर्शी बनेगी और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए दृष्टि पुनियानी।
दिल्ली नगर निगम ने वित्त वर्ष 2025-26 में संपत्ति कर संग्रह का नया रिकॉर्ड बनाया है। 31 दिसंबर 2025 तक निगम ने 2,700 करोड़ रुपए से अधिक का संपत्ति कर संग्रह किया। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 45% से अधिक है। इस दौरान संपत्ति करदाताओं की संख्या 10,31,000 से बढ़कर 12,43,000 हो गई। इस रिकॉर्ड संग्रह में सुनियोज संपत्ति कर माफी योजना 2025-26 की प्रमुख भूमिका रही। निगम ने बताया कि सुनियो योजना की अवधि 5% जुर्माने के साथ 31 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। निगम ने बकाया या कम कर भुगतान करने वाले करदाताओं से योजना का लाभ उठाने की अपील की है। भारत मंडपम में विश्व पुस्तक मेला में आज दिल्ली विधानसभा सचिवालय की प्रकाशित कॉफी टेबल बुक वीर विट्ठल भाई पटेल की गौरवगाथा एक शताब्दी यात्रा पर संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि इतिहास को भूलना लोकतंत्र को कमजोर करता है। श्री हरिवंश ने कहा कि वीर विट्ठल भाई पटेल को स्मरण करना एक लोकतांत्रिक अनिवार्यता है। उन्होंने कहा कि ये पुस्तक वीर विट्ठल भाई पटेल की विरासत को पुनर्जीवित करती है।
ये इतिहास का ऐसा प्रसंग है वीर विट्ठल भाई पटेल का, जिसे लगभग देश भूल चुका था, उसको पुनर्जीवित करने, उसे समाज के हर अंग तक ले जाने का यह अद्भुत काम भाई विजेंद्र जी ने किया। ये वही भवन है जहां विधायिका के माध्यम से किस तरह लोकतांत्रिक काम बेहतर तरीके से किए जा सकते हैं, ये भी रास्ता वीर विट्ठल भाई पटेल ने दिखाया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत मंडपम में विश्व पुस्तक मेले का दौरा किया। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने विभिन्न स्टॉल पर आगंतुकों से संवाद किया। 53वां विश्व पुस्तक मेला कल समाप्त होगा। शिक्षा मंत्री आशीष सूद आज नमो पुस्तक महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये नमो महोत्सव पुस्तकों, विचारों और संवाद का एक अनोखा संगम है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि ये मंच नीतिगत सुधारों, राष्ट्र निर्माण और भारत की 2047 की यात्रा को प्रदर्शित करता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री आशीष सूद आज वर्धमान शिक्षा मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने इस अवसर पर विद्यालय की पिछले 5 दशक की निरंतर प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने विद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मूल्यों और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर भी प्रकाश डाला। ग्रुप कैप्टन शुभांश शुक्ला ने आज नई दिल्ली के राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में वर्चुअल रियलिटी थिएटर और पैनल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी का शीर्षक पृथ्वी से कक्षा तक अंतरिक्ष की खोज साथ मिलकर है। इस अवसर पर श्री शुक्ला ने एक्सियोम 4 मिशन में अपने अनुभव साझा करते हुए अंतरिक्ष में जीवन और कार्य, अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण तथा कक्षीय मिशन की चुनौतियों के बारे में जानकारी दी। विभिन्न विद्यालयों के 400 विद्यार्थियों से बातचीत में श्री शुक्ला ने उन्हें अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि युवा प्रतिभाएं अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। श्री शुक्ला ने मीडिया से बातचीत में लोगों से प्रदर्शनी देखने का आग्रह किया।
बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं यहाँ पे आके। जिस तरह की गैलरी सेटअप की गई है, जिस तरह का वीआर ऑडिटोरियम सेटअप किया गया है, जिस तरह के इक्विपमेंट सेटअप किए गए हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही हाई क्वालिटी है और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस ये बच्चों को देते हैं। मैं आप सबको इसके थ्रू, इसके माध्यम से ये मैसेज देना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आए, इसको एक्सपीरियंस करें, इसका अनुभव लें, एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू, यू विल नॉट लीव डिसअपॉइंटेड।
पैनल प्रदर्शनी आज से सामान्य लोगों के लिए खुल गई है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कारीगरों और शिल्पकारों को समर्पित एक प्रदर्शनी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट कल से नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो रही है। एक रिपोर्ट।
इस प्रदर्शनी का उद्घाटन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी करेंगे। इसका उद्देश्य देश की समृद्ध पारंपरिक शिल्प कला विरासत का जश्न मनाना और उसे प्रदर्शित करना है। ये कारीगरों को अपने हस्त निर्मित उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों, हितधारकों और आम जनता के सामने प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक प्रमुख मंच प्रदान करेगा। मंत्रालय ने कहा कि देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 117 से अधिक कारीगर इस आयोजन में शामिल होंगे। विदेशी दूतावास के प्रतिनिधियों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। इस प्रदर्शनी को 31 जनवरी तक प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से रात्रि 10 बजे तक देखा जा सकता है। भानु की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
गणतंत्र दिवस समारोह में इस वर्ष राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में कहा कि यह समारोह आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के साथ राष्ट्रगीत को एक अनूठी श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। एक रिपोर्ट।
सोमवार से 26 जनवरी तक भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल और अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा वंदे मातरम विषय पर अखिल भारतीय बैंड प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। प्रस्तुति स्थलों में पश्चिम बंगाल के निहाटी जिले में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पैतृक घर और जन्म स्थान भी शामिल होगा। स्वतंत्र का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत जैसे व्यापक विषयों पर आधारित विभिन्न झांकियां भी प्रदर्शित की जाएंगी। पिछले वर्षों में वंदे मातरम और आत्मनिर्भर भारत विषयों पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के शीर्ष 200 विजेता गणतंत्र दिवस परेड 2026 के साक्षी बनेंगे। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
राष्ट्रपति भवन 21 से 29 जनवरी तक लोगों के लिए बंद रहेगा। राष्ट्रपति सचिवालय के अनुसार गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट समारोह के कारण प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। गणतंत्र दिवस परेड के पूर्वाभ्यास के कारण दिल्ली यातायात पुलिस ने 19, 20 और 21 जनवरी के लिए यातायात दिशा निर्देश जारी किए हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
दिशा निर्देश के अनुसार परेड टुकड़ियों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सुबह 10:15 से दोपहर 12:30 तक यातायात प्रतिबंधित रहेगा। ये प्रतिबंध कर्तव्य पथ से जुड़ने वाली प्रमुख सड़कों पर लागू होगा, जिनमें रफी मार्ग, जनपथ, मानसिंह रोड और सी हेक्सागन के चौराहे शामिल हैं। यातायात प्रतिबंध की अवधि के दौरान यात्रियों को इन क्षेत्रों से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि देरी और मार्ग परिवर्तन की आशंका है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं वैष्णवी।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से 400 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किए गए। इसका मूल्य 1.5 करोड़ रुपए से अधिक है। पुलिस ने बताया कि जांच जारी है। अपराध शाखा ने एक दूसरे मादक पदार्थ गिरोह का भी भंडाफोड़ कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से 380 ग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा एक गाड़ी भी जब्त की गई है। मामले की जांच जारी है। एक अन्य कार्रवाई में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने NCERT पाठ्य पुस्तकों की नकली छपाई और सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इस मामले में 2 करोड़ रुपए की कुल 44,800 से अधिक नकली किताबें, 2 प्रिंटिंग मशीनें और छपाई में इस्तेमाल होने वाली कई अन्य वस्तुएं बरामद की गईं। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में 9 दिन तक चलने वाले मुरारी बापू रामकथा का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने रामकथा को देश की सभ्यतागत ज्ञान में निहित एक जीवंत दर्शन बताया। जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने आज दिल्ली मेट्रो में यात्रा की। इस दौरान उनके साथ भारत में जापान के राजदूत ओनो कोइची भी थे। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर प्रतिनिधि मंडल को दिल्ली मेट्रो परियोजना के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता की गिरावट को देखते हुए तत्काल प्रभाव से चरणबद्ध कार्रवाई योजना GRAP 3 लागू कर दी गई है। एक रिपोर्ट।
यह निर्णय आज वायु गुणवत्ता सूचकांक 354 दर्ज किए जाने के बाद लिया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। प्रतिबंधों में मिट्टी के काम, नींव डालने, खुदाई करने और सड़क निर्माण गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध शामिल हैं। दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS4 डीजल संचालित हल्के वाणिज्यिक वाहनों में आवश्यक वस्तुओं को ले जाने या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर किसी भी वाहन को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा सुनिश्चित की जाने वाली 9 सूत्री कार्य योजना भी साझा की है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए जया भारती।
महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला नवी मुंबई में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 5 ओवर में 4 विकेट पर 41 रन बना लिए थे। राजधानी दिल्ली में आज सुबह धुंध छाई रही, वहीं दिन में समय धूप खिली रही। दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में स्वास्थ्य और जन सुविधाओं से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। राशन कार्ड पात्रता के नए नियम लागू, आय सीमा 1,20,000 रुपए हुई। दिल्ली नगर निगम ने वित्त वर्ष 2025-26 में संपत्ति कर संग्रह का नया रिकॉर्ड बनाया। वायु गुणवत्ता में गिरावट को देखते हुए GRAP 3 लागू किया गया। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।